ओम शांति। क्रांति है पुकारती, तू सो रहा जवान है। क्रांति है पुकारती, तू सो रहा जवान है। क्रांति की तू आन है, क्रांति की तू शान है। क्रांति का सपूत है, तू सो रहा जवान है। देश में है त्राही त्राही, सुन रहा है तू पड़ा। दीन की कराह आग, सुन रहा है तू पड़ा। गाँव गाँव भय अशांति, उठ रहा तूफान है। कौन है जो दौड़ दौड़ गाँव गाँव जाएगा, रक्त क्रांति के जहर से देश को बचाएगा। तेरे बल पर अब भी देख देश को गुमान है। करवटे बदल नहीं तू, अब तो आंखें खोल दे। तू निकल और एक बार इनकलाब बोल दे। तेरे दम से यह जमीन और आसमान है। छोड़ दे यह भेदभाव, तोड़ दे वह रूढ़िया। रूढ़ियों से बंध सकी है कब नई पीढ़िया। सब मनुष्य समान है और सबका हक हक समान है। तू बड़ा है जब भी तो आंधिया लजा गई। क्रांतियाँ कदम कदम पे मंजिलें सजा गई। तेरे इस सही कदम पे झुक गया आसमान है। मार्ग की मुसीबतों से कब रुकी जवानियाँ। पथ की चुनौतियों के डर से कब झुकी जवानियाँ। उठा कदम बढ़ा के तेरी सांस में तूफान है। क्रांति है पुकारती, तू सो रहा जवान है। क्रांति है पुकारती, तू सो रहा जवान है। क्रांति की तू आन है, क्रांति की तू शान है। क्रांति का सपूत है, तू सो रहा जवान है।
क्रांति है पुकारती, तू सो रहा जवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है पुकारती, तू सो रहा जवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। कौन है जो दौड़ दौड़ गाँव गाँव जाएगा। कौन है जो दौड़ दौड़ गाँव गाँव जाएगा। रक्त क्रांति के वहन से देश को बचाएगा। कौन है जो दौड़ दौड़ गाँव गाँव जाएगा। रक्त क्रांति के वहन से देश को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा के तेरी सांस में तूफान है। उठ कदम बढ़ा के तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है पुकारती, तू सो रहा जवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तू बढ़ा है जब भी तो आंधियाँ लजा गई। तू बढ़ा है जब भी तो आंधियाँ लजा गई। क्रांतियाँ कदम कदम पे मंजिलें सजा गई। तू बढ़ा है जब भी तो आंधियाँ लजा गई। क्रांतियाँ कदम कदम पे मंजिलें सजा गई। तेरे इस सही कदम पे झुके आसमान है। तेरे इस सही कदम पे झुके आसमान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है पुकारती, तू सो रहा जवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है।
जीवन सतत क्रांति है। क्रांति कोई घटना नहीं, जो हुई और चली गई। क्रांति निरंतर है। क्रांति अर्थात परिवर्तन। हर दिन क्रांति हो, हर दिन नवीनता हो, हर दिन एक विद्रोह, एक विप्लव। स्वयं के पुराने स्वभाव से। क्रांति की तू आन है, क्रांति की तू शान है, क्रांति तुम्हें पुकार रही तू छो, तू सो रहा जवान है, तेरी सांस में तूफान है। तो अभिनव क्रांति कोई सीरीज का नाम नहीं, परंतु अभिनव क्रांति जीवन में हो रही हर घटना का नाम है। वो हुई और समाप्त, ऐसे नहीं, अब हो रही है, अब हो, ताकि हम उस नए समाज की नींव अभी डाल सके। वो जो नया समाज, एक विधायक समाज, एक स्वर्णिम युग, इस धरती से धरती पर आने से पहले हमारे हृदय में अवतरित हो, और वो तभी होगा जब पुरानी मान्यताएं, पुरानी रूढ़िवादिताएं, पुराने बिलीफ सिस्टम्स को हम छोड़ने का साहस कर सके। और जब तक वो साहस नहीं, तब तक हम उसी पुरानी बातों में फंसे रहेंगे, क्योंकि युग बदल रहा है, समय बदल रहा है। किसी समय बाबा की शिक्षाएं थी कि हेलीकॉप्टर से पर्चे फेंको, सबको संदेश दो, पर किसी अव्यक्त वाणी में इस तरह का कुछ नहीं कहा गया। शिक्षाएं अपडेटेड होती गई, जो शुरुआत शुरुआत में कहा आते समय कह दिया, फिर इसको यहीं पर छोड़ दो, गाड़ दो, भक्तों के काम आएगा। नई शिक्षा है, नया ज्ञान, नए युग के लिए नया ज्ञान, और यह ज्ञान अपडेटेड होते रहता है। इसलिए पुराने को यदि हम पकड़ के रखें तो शायद हमारी उन्नति ना हो सके, क्योंकि समय के साथ सब बदल रहा है। परंतु नैतिक साहस या मॉरल करेज या अभय होने का ये अर्थ नहीं है कि हम अनैतिक हो जाए, अराजक हो जाए, और मूलभूत सिद्धांतों को और मूलभूत मर्यादाओं को ही छोड़ने लगे। परंतु फिर भी ये करेज क्या है, ये साहस क्या है, इसे समझना होगा, क्योंकि जब तक ये साहस नहीं, जब तक अंदर वो क्रांति की चिंगारी ना उठे, वो विद्रोह की ज्वाला न जगे, तब तक हम आगे बढ़ भी नहीं सकेंगे। तब तक 106 दिन हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बड़ी सीरीज में छोटी छोटी सीरीज देखी, बड़ी भट्टी में छोटी छोटी भट्टियाँ देखी, कुछ अपने साथ प्रयोग किए, बहुत सारी नई बातें, नई जो पुरानी थी उनको ही फिर से जाना, फिर से समझा, और संपूर्ण यज्ञ का इतिहास एक एक दिन रिवाइज किया। हो सकता है बहुत सी बातें आपको पहले ही पता हो, बहुत सी बातें ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगी ये ठीक नहीं है, मनमत है, तो जो अच्छा लगा उसको ले लो और जो अच्छा नहीं लगा उसको छोड़ दो। और यही क्रांति भी है, जो ठीक है उसको स्वीकार कर लो, और जो मन कहता है ये ठीक नहीं है उसे तब तक स्वीकार ना करो जब तक मन राजी ना हो जाए। जबरदस्ती कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है, क्योंकि कहीं पर लिखा है, क्योंकि हमें बताया गया है, क्योंकि परंपरा से वो बात चली आ रही है। इसलिए सत्य को स्वयं खोजना है। सत्य इतना सस्ता नहीं है कि गूगल में मिल जाए और सोशल मीडिया पर हमारी राह देख रहा है और किसी ने भेज दिया और हमने जान लिया। सत्य साधना है, सत्य तपस्या है, सत्य खोज है, और सत्य का मार्ग इतना आसान भी नहीं है। सत्य कीमत मांगता है, सत्य बलिदान मांगता है। सत्य का मार्ग त्याग, तपस्या और वैराग का मार्ग है। तो इस अभिनव क्रांति में आज हम प्रवेश कर रहे 107वें दिन। बहुत सी बातें की चर्चा हो चुकी है, कुछ रही हुई है, सब तो इसमें नहीं बताया जा सकता है, परंतु ये ऐसा समझो कि ये शुरुआत अभी हो रही है। अभी तक तो थियोरी सुनी, जो मेन काम है वो भी आज से, कल से, परसों से करना है। ये ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो जस्ट एक ट्रेलर, अभी तो खाली नींव डाल के रखी है। आगे की जर्नी तो अभी बाकी है, यात्रा लंबी है, दुर्गम यात्रा है। अभी बादल भरे हैं, बस एक पेशेंट का ऑपरेशन होना था और उसके रिश्तेदार पकड़कर उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। वो कहते हैं मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मर जाऊंगा पर ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मुझे एलोपैथी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, मुझे चाहे तो आयुर्वेद दे दो, मुझे चाहे तो नेचुरोपैथी दे दो, होम्योपैथी दे दो, परंतु एलोपैथी पर को मैं नहीं मानता और मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है और मुझे बहुत डर लगता है ऑपरेशन से। रिश्तेदार नहीं मानते, 4-5 लोग पकड़ कर उसको हॉस्पिटल लेके आते हैं, ऑपरेशन तुमको कराना ही पड़ेगा। वो कहता है नहीं कराऊंगा, मुझे डर लगता है, ऑपरेशन शब्द से ही डर लगता है। बेड पर लिटाया जाता है, स्पेशल वार्ड, उधर से डॉक्टर आते हैं, दरवाजे से ही डॉक्टर कहता है इतनी बदबू आ रही है, क्या इसने नहाया नहीं है? रिश्तेदार कहते हैं पिछले 10 दिन से बस एक ही रट लगा है, मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, ना नहाता है, ना सोता है, ना खाता है, वो बस एक ही रट लगा के है कि मुझे ऑपरेशन नहीं करना है। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन मैं नहीं करूंगा, पहले इसको नहलाओ, बदबू आ रही है इसके शरीर से। ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में अंदर ओटी में नहीं लेके जाएंगे, पहले इसका शाही स्नान कराओ। वार्ड बॉय आते हैं और उसको सब पकड़ के ले जाते हैं और उसको बहुत अच्छे गरम गरम पानी से नहाते हैं। नहाने के बाद वो इतना खुश हो जाता है, कहता है मुझे पता ही नहीं था इतना अच्छा होता है ऑपरेशन। इसको ऑपरेशन कहते हैं, मुझे पता ही नहीं था। अभी तक तो नहाना चालू था 106 दिन, अभी तक बदबू बहुत थी, पकड़ पकड़ के नहलाया जा रहा था, ऑपरेशन तो अभी बाकी है। ऐसे ही कुछ मत हो जाना कि ये पूरा हो रहा है, 108 दिन पूरे, 108 दिन का रसाहार पूरा। समर तो शेष है फिर भी, गुलामों की नए नई फौजे सजेगी, हिल उठेगा उठेगी रोम की ताकत और आतंक पिघलेगा, महल बरसाएगा फिर धूल में मिल जाएगा, गतिरोध टूटेगा, महाविद्रोह उठेगा, कम्युनाड पेरिस के उठेंगे हर नगर में, अवरोरा जलप्रोत से फिर तोप गरजेंगे, लतीनी अमेरिका, एशिया में, अफ्रीका में क्रांतियों के रक्तवर्णी मेघ बरसेंगे, ना उनकी जीत अंतिम है ना अपनी हार अंतिम है, उठो ओ नौजवानों इनकलाबों के नए संस्करण गढ़ने का समय फिर आ रहा, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा, हर शहर से एक शिकागो उठ खड़ा हो, सोच के आगे बढ़े हम, मई दिवस बन जाए हर दिन साध का, यह सोच तैयारी करने लगे हम फिर, सुनो इतिहास कहता है पराजय झेल कर ही क्रांतियां परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है, अंधेरा आज सच का आज गहरा है, श्रमिक जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभिषण, उठो शिल्पियों नवयुद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा। अभी तो समर बाकी है, पराजय हुई होगी शायद कई बार इन 106 दिनों में, परंतु पराजय झेल कर ही क्रांतियां परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। उठो संग्रामी हो जागो, उठो हो नौजवानों, उठो ओ सर्जको, कि नवयुद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा। तो क्रांति की श्रृंखला में सेकंड लास्ट डे बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, हो रहा है ब्राह्मण समाज में। जो पहले हम ये कहते थे ये बाबा का बनाया हुआ सिस्टम है, इसे ऐसे ही चलाना है, अभी उस सिस्टम में बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है। और इसीलिए 2007 से 22 तक का ये समय है, इसको नाम क्या दिया गया, द शिफ्ट। बहुत सारी बातों में चेंज, और ये जो शिफ्ट है ये इसीलिए है, इसलिए नहीं कि कुछ तो नया है, वही ओरिजिनल काम तो वही है जो पुराना है। आत्माभिमानी बनना, सारा ज्ञान एक ही वाक्य में, आत्मा समझकर बाप को याद करना, इसे एक वाक्य की सार्थकता या प्रैक्टिकल में लाने के लिए इतने सालों का ये ज्ञान है, इतनी साकार मुरलियाँ, इतनी अव्यक्त वाणियाँ हैं, और इतना तप परिश्रम तपस्या हम कर रहे हैं। सुबह सुबह उठते हैं अमृत वेला, इतनी तपस्या, सुबह सुबह चिंतन करते हैं, मुरलियाँ सुनते हैं, भोजन का कितना परहेज रखते हैं, बाहर के लोगों के हाथ का नहीं खाते, प्याज लहसुन नॉन वेज ये सब छोड़ रखा है जो पहले लेते थे। दिन भर में कितना ध्यान रखते हैं कि हमारी वजह से किसी को दुख ना हो, नुमा शाम का योग करते, किताबें पढ़ते हैं, चार्ट लिखते हैं, इतना सारा परिश्रम करने के बाद भी कहीं कहीं हमने ढील दे रखी है, और उस ढील की वजह से वो नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए था। इसीलिए द शिफ्ट करना तो मूलभूत वही है, जैसे एक व्यक्ति एक तालाब के पास पहुंचता है और वहाँ मछलियाँ पकड़ने लगता है, वहाँ लिखा होता है कि यहाँ फिशिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, अलाउड नहीं है सरकार की तरफ से, फिर भी वो मछलियां पकड़ने लगता है। और जब पकड़ ही रहा था तो एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर वहां से गुजर रहा होता है, वो देख लेता है उसको और डर जाता है, और वो मछलियां पकड़ते पकड़ते हाथ में कुछ मछलियां होती है वो सब छोड़ देता है, एक को पकड़ लेता है बस। वो पुलिस आता है, कहता है क्या कर रहे हो, वो कहता है कुछ नहीं, इस मछली को तैरना सिखा रहा था, मछली को तैरना सिखा रहा था। मछली को तैरना सिखाने की जरूरत नहीं है, आत्मा को आत्माभिमानी बनने को सिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो उसका स्वभाव है, उसका जन्म ही पानी में हुआ है, परंतु गड़बड़ हुई है बीच में। इसीलिए आवश्यकता है यहाँ पर कि हम अपने आप को सिखाए कि मैं हूँ कौन, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। तो आज हम चर्चा करेंगे चेंजिंग ट्रेंड्स इन बीकेस, अर्थात बदलते रुझान ब्राह्मणों में, बदलते जो रूढ़िवादियाँ थी वो ऑलरेडी चेंज हो रही है। तो ऐसी हम चार और चार ऐसी आठ बातें देखेंगे, वो कौन से चेंज ब्राह्मण परिवार में ऑलरेडी आ चुके हैं, आ रहे हैं, और आगे के समय में और तेजी से आएंगे, बहुत तेजी से। वो शरीर संबंधित है, स्वास्थ्य संबंधित है, ज्ञान संबंधित, कुछ मत मतांतर जो भीतर है उसके संबंधित, तो ऐसे बहुत से चेंजेस ऑलरेडी आ रहे हैं। तो ऐसी कुछ बातें आज हम देखेंगे, इससे पहले कि कल हम इस भट्टी की समाप्ति करें, कुछ चेंजेस हमें अपने अंदर लाने हैं। सबसे पहला साइलेंट भट्टी, मधुबन में भट्टिया होती है, सेंटरों पर भट्टिया होती है, रिट्रीट सेंटरों पर भट्टिया होती है, पर ये सभी भट्टियों में आवाज़ है, क्लासेस है, गीत बजते हैं, म्यूज़िक बजता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। पर विदेश में अभी अधिक से अधिक ट्रेंड कौन सा चालू हो गया है? साइलेंट रिट्रीट का, साइलेंट भट्टियों का। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं जाए, वहाँ तो बाकायदा कोई स्थान लिया जाता है, कोई हिल स्टेशन पर, कोई हिमालय की चोटी पर या नीचे तलहेटी में जाते हैं, सब लोग भाई बहन अलग अलग जगह से आते हैं, कोई रिसॉर्ट लिया जाता है और 3 दिन वहाँ रहते हैं टोटल साइलेंस में, कोई क्लास नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, म्यूज़िक होगा अभी तो थोड़ा सॉफ्ट म्यूज़िक, सुबह से लेकर रात तक एकांत में सभी बैठकर योग करते हैं। तो अभी धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ता जाएगा, भारत में भी, विदेश में तो चालू हो चुका है। भारत की भट्टिया आवाज़ भरी भट्टिया है, भट्टिया यहाँ हो रही है मधुबन में, पर भाई बहने मिलते हैं मार्केट में घूम रहे हैं, या फिर साइट सीइंग चालू है। भट्टी अर्थात टोटल लॉकडाउन, भट्टी अर्थात मोबाइल स्विच्ड ऑफ। यहाँ तो भट्टी की क्लासेस में भी मोबाइल बजते रहते हैं, ये किस तरह की भट्टी है? भट्टी अर्थात संसार से डिसकनेक्ट टोटल, कम से कम 3 दिनों के लिए आत्माओं से वो भी नहीं हो पाता। मोबाइल चालू रहते हैं, बजते रहते हैं, संसार से कनेक्शन चालू रहता है। कैंपस भट्टी के 3 नियम होते हैं, पहला जो हर भट्टी में हम बताते हैं और सबको बताया भी जाता है, मोबाइल स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ, हाथ शरीर इलेक्ट्रॉनिक्स टच ही ना करे, ये तो सबसे, अगर ये नहीं किया तो बस वो भट्टी में आना केवल एक मनोरंजन हो सकता है, थोड़ी बहुत यादें, भोजन बहुत अच्छा था, क्लासेस बहुत अच्छी थी, ये सब कह के वहाँ सेंटरों पर जाकर सनली पर बैठकर अपना अनुभव सुना के फुल स्टॉप, आप कुछ नहीं करने आगे, जो चल रहा था वही चलने दो, वही जीवनचर्या। दूसरा नियम होता है आपस में बातचीत बंद, पर सब जगह देखा जाता है कि आपस में बातचीत चालू है। आपस में बात करते करते तपस्या कैसे की जा सकती है? असंभव, इम्पॉसिबल। और तीसरा, जहां भट्टी कर रहे हो उस कैंपस से एक कदम भी बाहर नहीं रखना। ये 3 चीजें तब होगी, तभी भट्टी होगी, अन्यथा वो कुछ और हो रहा है। 3 बौद्ध सन्यासी घूमते घूमते परिभ्रमण करते करते, परिव्राजक है, सन्यासी है, घूम रहे, श्रीलंका पहुंचते हैं, कभी दिखता है किसान है और अभी बारिश चालू होने वाली है, वो सोचते क्यों ना एक ही स्थान पर रुक जाए 3 मास के लिए, अच्छी तपस्या होगी, अच्छी साधना होगी, और रुक जाते हैं तीनों एक ही स्थान पर। वो जो मालिक होता है खेत का, किसान, वो तो उनका स्वागत करता है, कहता है, उनसे वो कहते हैं कि क्या हम रुक सकते हैं, वो तो कहता है धन्य भाग मेरे कि आप जैसे योगी पुरुष मेरे खेत में रुके। वो उनको एक कमरा दे देता है, अलग अलग 3 कमरे, और कहता है आप रुको, आपका सब कुछ मैं करूँगा, भोजन जो भी देना है सब कुछ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। 3 मास पूरे होते, तीनों की बहुत अच्छी साधना हुई, तीनों आपस में बैठ के बातें करते, बताओ घंटे कैसी रही साधना? पहला कहते हैं मेरी बहुत अच्छी साधना हुई, बहुत अच्छी, मैंने अपने मन को इस गांव के बाहर कहीं जाने ही नहीं दिया, अर्थात जहां पर भी मन गया, जो यहां आने से पहले जो कुछ हमने देखा था, बस इससे बाहर कहीं नहीं गया, वो उतना ही घूमा। दूसरा को पूछते हैं तुम्हारी साधना कैसी हो, वो कहता है मेरी साधना तो बहुत अच्छी हो, मैंने इस कमरे के बाहर अपने मन को जाने ही नहीं दिया। दादी जानकी ने 40 दिन तक एक ही कमरे में बैठ के साधना की थी, एक ही कमरे में निकले ही नहीं बाहर, उस दिन सुनाया था क्लास में, और बाबा रोज आके दादी को दृष्टि देते थे मधुबन में। तीसरे को पूछा जाता है बोलो तुम्हारी साधना कैसी रही, वो कहता है मैंने अपने मन को इस शरीर से बाहर ही नहीं जाने दिया, सुबह से लेकर शाम तक बौद्ध साधना, आंखें बंद, बस शरीर, इससे बाहर उसको निकलने ही नहीं दिया, ये है तप। इसके अतिरिक्त यदि कुछ कर रहे हैं, अमृत वेले से पहले भी बातें चलती, अमृत वेला हो गया उसके बाद भी सीढ़ियां उतरते उतरते बातें चल रही। ये तपस्या नहीं, आडंबर है। तो बदलते रुझान में सबसे पहला है साइलेंट रिट्रीट। और वेट नहीं करना है कि साइलेंट रिट्रीट कहीं हो और हमें बुलाया जाए और हम रजिस्ट्रेशन करें और हम जाएंगे और वहां बैठेंगे और क्लासेस सुनेंगे और बहुत नोट्स निकालेंगे। अपनी साइलेंट रिट्रीट खुद निर्माण करनी है, स्वरचित भट्टी, खुद ही निर्माण करो कि आज मेरा मौन का दिन है, आज मेरी रिट्रीट है 6 घंटे की। पूरा दिन नहीं कर सकते क्योंकि सेवाएं हैं, 6 घंटा, 3 घंटे की, 1 घंटे की। पर अब ये नया रुझान, ये नयापन लाना है स्वयं में, फर्स्ट। सेकंड, रिसर्च एंड स्टडी। फॉरेन में बीके भाई बहने बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, हर चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं, हिस्ट्री का रिसर्च कर रहे हैं, यज्ञ का इतिहास कैसा था, क्योंकि बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स मिले, उसमें कुछ नई नई बातें पता चली, और गहराई से इस यज्ञ के प्रति प्यार हो। हर चीज़ का रिसर्च ओरिएंटेड रहना है, कोई भी चीज़ ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेना, ये ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए, क्यों माने, क्यों स्वीकार करें। अपने मन को एनालिटिकल बनाना है, तर्कपूर्ण, तर्क से सोचना है हर चीज़ के बारे में, क्योंकि वर्तमान, कल भी हमने देखा माया के नए नए रूप और कितनी नई नई बातें देखी, और नई नई माया संसार में आ रही है जो मन को कन्फ्यूज्ड कर देती है, समझ ही नहीं आता है ये क्या है, ये हो क्या रहा है। पहले ही कलयुग का अंत है, संगम युग भी 5 युगों से गुजरता है। संगम युग में भी सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है और संगम युग है। संगम युग का संगम युग, संगम युग की शुरुआत, संगम युग का सतयुग वो है जब हम ज्ञान में आते हैं। तो इतनी खुशी क्या करूं और क्या नहीं करूं, किस किस को पकड़ पकड़ के ज्ञान ना सुना दूं, जो जो मुझे मिला है सबको सुनाऊं, पूरी की पूरी मुरली याद कर लूं, पढ़ लूं, जान लूं, ऐसा कुछ छूटने ना पाए, पहले मुझे लेट हो गया है, इतनी खुशी। उठते ही भगवान मिला, खटिया हिलती है 2 बजे और अपने आँख खुलती है, नींद का नामो निशान नहीं, मुरली में नशा ही नशा, सेवाओं में, सेंटरों में, क्या करूं और क्या नहीं करूं, साक्षात देविया बैठी है संदली पर। मधुबन के लिए कितना नशा, कितना प्यार, आंखों से आंसू आ जाते हैं ट्रेन में, अभी मधुबन पहुंचे नहीं है, कितना सुंदर, कितना प्यारा मधुबन, ये हमारा है, सारे जहां से अच्छा है, कैसे कैसे गीत, भगवान हमारा साथी है, आंखों से अश्रुधाराएं बहती है, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, जो सुख मिलता है उपकार तुम्हारा है बाबा, किन शब्दों में मैं गाऊं। नाचने लगता है, अगर दरवाजा बंद करके कोई कोई तो नाचते भी है कमरे में अकेले, हमको मिले हैं परमात्मा, ये है सतयुग संगम का। फिर है त्रेता युग, थोड़ा सा नशा कम होना चालू होता है, पहले तो बहुत नशा था, अब नशा है परंतु कम 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 कम, कम। त्रेता फिर चालू होता है द्वापर, द्वापर में भक्ति चालू होती है, कंप्लेंट्स चालू होती है, हे प्रभु कुछ करो, अवगुण दिखाई देने लगते, पर चालू हो जाता है, पर चिंतन, पर दर्शन, पर दोष, पर मत, और फिर अपनी कंप्लेंट्स ले लेके भक्ति, द्वापर से भक्ति चालू होती है ना। संगम युग में भी द्वापर की भक्ति, अर्थात अपने सीनियर्स के पास अपनी अपनी कंप्लेंट्स लेकर पहुंचते हैं, दादी ये भाई को ठीक करो, ये ठीक नहीं है, कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स, ये है द्वापर युग। कौन सा द्वापर युग? संगम युग का द्वापर युग, संगम युग का द्वापर युग, जहां पर चालू हो गया है, अवगुण देखना चालू हो गया है, दोष देखना चालू हो गया, नुक्ताचीनी करने लगे है, ये सब कुछ चालू हो गया है संगम युग पर, द्वापर में। और जब कलयुग आता है फिर, कि हमने कंप्लेंट तो की पर हमारी कोई सुनता कहां है, यहां सभी ऐसे ही है, घोर घृणा, नफरत, अब्यूजेस, ग्लानी, निंदा एक दूसरे की, ऑनलाइन निंदा, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार, लड़ाइयाँ, झगड़े, निश्चय की कमी, ये है घोर कलयुग। किसका कलयुग? संगम युग का कलयुग। पर कहाँ हो रहा है ये सब? मन में चल रहा है, बाहर नहीं चल रहा है, सब मन में। परंतु कलयुग के बाद फिर क्या होता है? संगम। और संगम भी होता है जब इतनी निगेटिविटी बढ़ जाती है ब्राह्मण आत्मा में, हर चीज़ के प्रति निगेटिविटी, यज्ञ के प्रति निगेटिविटी, यहाँ होने वाली चीज़ों के प्रति, सब बातों के प्रति, फिर इस निराशा में कभी कभी वो सतयुग याद आता है, फिर वो बचपन के दिन भुलाना देने गीत याद आता है, और फिर अचानक कुछ ऐसे आत्माओं का संग मिल जाता है जो तीव्र पुरुषार्थ है, जो जागरण में है, जो जागे हुए हैं, जिनमें ये निगेटिविटी है ही नहीं, या फिर ये निगेटिविटी उन्होंने क्रॉस कर ली है। वास्तव में ये अवस्था में वही पहुंच सकता है जिसने ये सब देख लिया। खाली पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव भी देखा है, कंप्लीट निगेटिविटी भी देखी है, क्योंकि यज्ञ के तीन लेयर्स है, टोटल पॉजिटिविटी शुरुआत में, फिर निगेटिविटी, और लास्ट की लेयर दादियों की लेयर लेयर, उनमें कोई पॉजिटिव निगेटिविटी है ही नहीं, उनको कुछ भी नहीं दिखता ये सब निगेटिव, उनको सब अच्छा ही अच्छा दिखता है। वो सत्य है, वहां तक पहुंचना है, वो है संगम का संगम, और उसी के बाद फिर सतयुग आएगा। वो वाला सतयुग नहीं, यहीं पे सतयुग आएगा मन में। तो रिसर्च करना है ज्ञान पर, कुछ भी पॉइंट ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लो, डेप्थ में जाओ, उसके गहराई में, डीप डीप डीप। तो सेकंड चीज, बदलता रुझान, बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ब्रह्मा कुमारीज के बारे में लिख रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज अ न्यू रिलीजन। चिंतन करो, क्या ब्रह्मा कुमारीज भी एक कल्ट है? क्या एक धर्म है? जैसे बाकी धर्म थे, उनका एक स्थापक था, उनके नियम थे, फिर वो धीरे धीरे डिटेरेशन हो गया और नष्ट हो गया, क्या वो भी यही होगा? क्या यहाँ पर भी गिरती चढ़ती कलाएं हैं? चिंतन के विषय है, चिंतन करना है। तो सेकेंड नंबर रिसर्च, थर्ड नंबर एक्सरसाइज, ब्राह्मणों के बढ़ते वजन शरीर के, अभी तक केवल ज्ञान ज्ञान ज्ञान, योग योग योग, व्यायाम, शरीर की तरफ ध्यान कम है ब्राह्मणों का, पर बाबा के जीवन को देखो तो बाबा खुद एक्टिव स्पोर्ट्समैन है, सब कुछ हल्के फुल्के है और ऊर्जा से भरे हुए, और वर्तमान ब्राह्मण भारी भारी है, चर्बी से भरे हुए। एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम, ये बदलता रुझान, ये बदलता ट्रेंड है, और इसकी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है, अवेयर है सब लोग। ऐसे ही कुछ भी नहीं खा लेते, सोचते कितनी कैलोरीज जाएगी, कैलोरीज कॉन्शियस, कैलोरी कॉन्शियस होते हैं, अरे ये तो नहीं खाऊंगा, इसमें 300 कैलोरी, इसमें 400 कैलोरी, थोड़ा तो खा लो, नहीं 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 इसमें कैलोरी ज़्यादा है, ये चलो यहाँ तक भी आए तो भी ठीक है, क्योंकि इतना फ्रिक्वेंटली हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हार्ट अटैक, एंजियोग्राफी, स्टेंट, बाईपास, जवान जवान, तो अभी इसकी बहुत आवश्यकता है। शरीर को हिलाना है, हर जॉइंट एक चक्र है, एक एक जॉइंट को हिलाना है, एनर्जी जो है ना उसको, एनर्जी लव्स टू मूव, एनर्जी को मूवमेंट पसंद है, अगर वैसे ही रखोगे तो शरीर स्टिफ हो जाता है, कड़क हो जाता है। 24 घंटों में एक बार, चाहे एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज, जिम वाली एक्सरसाइज, या योगासन वाली फ्लेक्सिबिलिटी, जो कर सके करो, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, कुछ भी, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें वर्तमान समय बहुत आवश्यक है। ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ, वीगनिज्म इन बीकेस। वीगन अर्थात वो लोग जो दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेते, ये ट्रेंड बीकेस में अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। विदेश में ग्रुप्स बने हुए वीगन्स इन बीकेस, क्यों? इसको बहुत अच्छे से और गहराई से समझना है, क्योंकि जब भी इस पर चर्चा की जाती है, हम कहते हैं ये बाबा का सिस्टम है, दिस इज़ बाबा सिस्टम, पर इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। क्या? क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत। इसको एक किसी लेखक ने कहा ये स्पिरिचुअल लेजीनेस है। एक तरफ तो हमारे जीवन का लक्ष्य है बीके का सोल कॉन्शियसनेस, हाईएस्ट प्योरिटी। हम चाहते हैं कि हमारी की वजह से कोई भी हिंसा ना हो, हमारी वजह से ना दुख दो ना दुख लो। ये मुरलियों की टीचिंग से ये हमको सिखाया जाता है। पर जब जानवरों की बात आती है तो हम वो उसको कहाँ तक सीमित रखते हैं? हमारे ज्ञान में जानवरों का क्या स्थान है? हम कहते हैं कि मनुष्य आत्मा जानवरों की आत्मा में नहीं जाती, एक तो ये पॉइंट बताया जाता है। दूसरा हम बताते हैं कि हम उसको मारते नहीं हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते, ये पॉइंट हम जोर से बताते हैं, अच्छे से बताते हैं। बट यदि अहिंसा की फिलॉसफी को देखो तो मीट, मटन, एग और मिल्क, ये तीनों भी जानवरों से आ रहा है और ये जानवर हमारे लिए नहीं बना रहे। ना दूध हमारे लिए बन रहा है जानवरों का, ना अंडे हमारे लिए बन रहे हैं, ना तो मटन मीट हमारे लिए बन रहा है। ये उनके अपने अपने वो जो मिल्क जो बनता है वो मनुष्य ही एकमात्र है जो किसी दूसरे की माँ का दूध पीता है, और कोई भी प्राणी किसी माँ का दूध नहीं पीता एक निर्धारित, और व्यक्ति पीते ही रहता है और बीमार पड़ते रहता है। हरित क्रांति इसको कहते हैं, मिल्क रिवॉल्यूशन जो आया भारत में 13 जनवरी 1971, तीनों ने मिलके जो अमूल जिसको कहते हैं फ्लड ऑपरेशन, हरित क्रांति आई। भारत ने यूएस को, श्वेत क्रांति, यूएस को ओवरटेक कर लिया मिल्क प्रोडक्शन में, वो तब थम समय था। पर अब जो जानवरों के साथ हो रहा है वो यदि देखो कि जो दूध का प्याला तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें कितनी हिंसा और कितनी काम वासना भरी हुई है, तो कभी पीने की हिम्मत नहीं करेंगे। और इतना पुरुषार्थ कर रहे, अमृत वेला उठ रहे, सब कुछ कर रहे और फिर दूध पी रहे, सारी मेहनत बफेलो गया किधर? पानी में। एनिमल्स हमारे नहीं है, एनिमल्स का इस सृष्टि चक्र में, इस ड्रामा में अपना एक रोल है। सतयुग में वो हमारे साथ आएंगे, हमारे प्रयोग के लिए नहीं, हमारे यूज के लिए नहीं। वो हम क्या क्या कर रहे हैं उसको, हम ना तो उनको अपने भोजन के लिए, अपने ड्रिंक के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए और अपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हमने जानवरों को अपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज़ किया है लैब में, हमने जानवरों का एंटरटेनमेंट के लिए सर्कस में यूज़ किया है, हमने जानवरों को अपने कपड़ों के लिए, चमड़ी, जूते कौन से पहनते हैं? लेदर। बैग कौन सी पहनते हैं? लेदर, लेते हैं लेदर की बैग। जो भी लेदर रिलेटेड चीज़ें सब जानवरों से आ रहा है, वो हमारा उसमें हिंसा समाई हुई है। ड्रिंक, फूड के लिए तो हमने मना कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं खाते ये सब मीट मटन, नॉनवेज हम खाते ही नहीं, और हमें बड़ा अहंकार है कि हम वेजिटेरियन है और हम इसके हाथ का नहीं खाते और उसके हाथ का नहीं खाते। शेम ऑन दिस फॉल्स वेजिटेरियनिज्म, ऐसा कोई कहता है। ये सब नहीं खाते पर बाकी क्या कर रहे हो? बाबा फादर ऑफ ऑल ह्यूमन सेल्स, ब्रह्मा बाबा फादर ऑफ ऑल सोल्स, ये हमको जो शिक्षा दी गई, सुख लो सुख दो, इसमें ये सारी शिक्षाएं टूट रही है। कल्टीवेशन धारणा हमारा है, मिल्क जो कुछ बन रहा है हम उसको थोड़ा ये कर देते, अलग कर देते, नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्याज लहसुन से फर्क पड़ता है पर इससे नहीं पड़ता है। और जिस तरह का दूध अभी बन रहा है और जिस प्रोसेस से बना जाता है और जानवरों को साथ जो कुछ होता है उसमें हिंसा के अतिरिक्त तो कुछ भी समाया नहीं है। फोर्सफुली पकड़ा जाता है, उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इम्प्रेगनेट कराया जाता है, गर्भवती बनाया जाता है उस गायों को, इंजेक्ट किया जाता है, फिर उनको फिर थक पूरी एग्जॉस्ट हो गई फिर से इंजेक्ट किया जाता है, इम्प्रेगनेट, आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी उन जानवरों को, उससे वो दूध निकलता है। उनको कितना मारा जाता है ये तो बहुत बड़ा विषय है, 21 दिन भी अगर इस पर बात करें तो बहुत कम है। ये तो बात हुई उसकी पेन और सफरिंग, एक एक गाय जो सफ़र करती है उसका जो दर्द है, एक इंग्लिश में है आइस्टेनियन वेव, पेन वेव्स। आइस्टेनियन पेन वेव्स क्या होती है ये फिजिक्स है, अब लेट अस कम टू साइंस। आइंस्टेनियन पेन वेव, कहीं भूकंप आता है ऐसे ही भूकंप नहीं आता है, जिन एरिया में जानवरों को तड़पाया जाता है, मारा जाता है, बलि चढ़ाई जाती है उनकी, उनकी जो आह है, उनकी जो कराह है, वो जो दर्द के संवेदना है, जो वाइब्रेशन से एटमॉस्फेयर में जाते और वहाँ पर उस टेक्टोनिक फील्ड में, उस अर्थ प्लेट्स में चेंजेस होते हैं, वहाँ अर्थक्वेक्स होते हैं। ये अपने आप में एक थियरी है, जो रिसर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इसके ऊपर। और उसका जो स्लॉटर है, हम एक कहते हैं कि हम तो उसको मारते नहीं है, मारते तो नहीं है पर उसका दूध तो ले रहे, उसका दूध तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं, उसका उसके अपने बछड़ों के लिए है, दूध के लिए उनको पाला जाता है, काम पूरा हो गया तो मार दिया जाता है। अब आते हैं मेडिकल टीचिंग्स, मेडिकल टीचिंग्स क्या कहती है, डॉक्टर बी एम हेगड़े, ये है पद्म भूषण 2010 के, उनका क्या कहना है दूध के विषय में, वो कहते हैं मिल्क इंडस्ट्री इज कॉल्ड इन इंडिया इट्स अ हेल्थ हैजार्ड है, हमारे शरीर में ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं है कि दूध दूध को पचा सके, इसके लिए अधिकतर बीमारियां जो उत्पन्न हो रही है दूध से उत्पन्न हो रही है। इन एनिमल वो लिखते हैं कि वी ह्यूमंस डू नॉट हैव एनी एंजाइम्स टू डाइजेस्ट मिल्क फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस आफ्टर वी वीन अवे फ्रॉम देम फ्रॉम आवर मदर्स मिल्क, एक निर्धारित आयु तक हमें दूध की जरूरत है, जो हमारी माँ से हमको मिलता है बचपन में वो पूरा हो गया उसके बाद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें एलर्जेंस होते हैं। और सबसे बड़ी स्टडी जो हुई है दूध पर, जिसके बाद में बीकेएस में रिवॉल्यूशन आया, दूध के विषय में क्रांति आई कि इसको अवॉइड करना था, वो थी किताब द चाइना स्टडी, और जो मेडिकल में सबसे फेमस जर्नल है मेडिकल फील्ड में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, उसमें भी 2010 में सारे डाउट्स अलग कर दिए जब उसमें मल्टी सेंट्रिक पब्लिश स्टडी हुई और ये बताया गया कि ह्यूमन सिस्टम में जो भी मिल्क डाला जाता है उसमें एलर्जेंस है, एलर्जी, कई सारे लोग हैं जिनका पेट कभी ठीक ही नहीं हुआ है, हमेशा लूज मोशन होते रहता है, कुछ भी खाया तो जाना पड़ता है। जैसे ही हमारी अपनी लास्ट 10 ईयर्स की हॉस्पिटल की प्रैक्टिस से यहाँ की हमने देखा, जिन जिन का दूध छुड़वाया उनकी बहुत सारी एलर्जेंस खत्म हो गए, उनका पेट ठीक हो गया, उनकी बीमारियाँ ठीक हो गई, पर हमारे नस नस में यही भरा है कि दूध पियो ताकि शक्ति मिलेगी, दूध पियो ताकि हड्डियाँ मजबूत होगी। ह्यूमन पैनक्रियाटिक सेल्स जो दूध पीने वाले हैं, अधिक से अधिक कैंसर की बीमारियाँ उनमें पाई जाती है, जो दूध पीने वाले जो डोमेस्टिक कैट्स एंड डॉग्स है, जो पालतू कुत्ते और बिल्ली आए जिसको हम जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, वो उनके जो भाई बहने हैं जो जंगल में रहते हैं उनसे इनकी ग्रोथ कम होती है। दूसरा, कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कैंसर। ब्राह्मण कहीं बाहर का खाते नहीं, नॉनवेज नहीं खाते, फिर भी कितने सारे ब्राह्मण हैं, दिन ब दिन पता चलता है इसको कैंसर डिटेक्ट हुआ। अभी अभी एक भाई बहन जी का फ़ोन आया कि उसका कैंसर डिटेक्ट हो गया, रिपोर्ट भेज रही हो, रिपोर्ट भेजा देखा लीवर कैंसर पर पूरे शरीर में फैल गया। हमने कहा क्या करना है, तो बहन जी ने कहा हम देखते अभी क्या कर रहे हैं, डॉक्टर ने तो ऐसा कहा वैसा कहा, हमने कहा यहाँ भेज दो, यहाँ भेजने का चल रहा था या फिर कहीं नेचर क्योर सेंटर पे जाने का सोच रहा था वो भाई, और अभी कल परसों ही फोन आया उसने शरीर छोड़ दिया। कुमार, कोई भी व्यसन नहीं आज तक, कभी भी नहीं, और हमारी जो गट इम्यूनिटी है वो डेवलप ही नहीं होती है, वो इतने भारी प्रोटीन्स होते हैं उसमें, केसिन वे प्रोटीन्स होते हैं दूध में, वो जैसे ही हम खाते पूरा पनीर खा लो अगले शाम को भूख ही नहीं लगती है, लगती है, खा लो पूरा ब्लॉक कब्ज। फिर कुछ कुछ है जैसे गोट मिल्क बकरी का, वो माना जाता है सबसे कम एंटीजेनिक है, पर है तो वो हिंसा वाला भाग तो वहाँ पर भी आएगा मेडिकल की दृष्टि से, हाँ ठीक है गोट वाला ले लो, कई लोग कहते हैं क्योंकि सबसे कम बीमारियाँ एंटीजेंस कम है, बाकी सभी प्रोटीन्स में ये मिल्क में एंटीजेंस बहुत है, ये बहुत सारी चीज़ें एंटीबॉडीज क्लैमर फिलोसॉफी और क्रुएल्टी उसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी नहीं पढ़ेंगे। मैड काउ डिजीजेस, ऐसी कई सारी बीमारी है, टीबी वो जो दूध होता है उसका, फिर भी हम दूध की क्या क्या चीज़ें बनाते, लिस्ट निकालो दूध की बनी हुई चीज़ें, पनीर स्वी चीज़ पेड़ा सारे, दूध को हम किसके साथ जोड़ते हैं, अनाज के साथ, मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन, दूध अनाज और चीनी, बीमारी निश्चित है, खीर रबड़ी घी आइसक्रीम्स, कितनी सारी आइसक्रीम, ब्राह्मण तो बाहर की भी आइसक्रीम खाते हैं, कहते हैं ये बना मशीन मेड है, चिल्ड चिलैक्स, रिलैक्स हो जा थोड़ा ये खा लो, इन सब में हिंसा समाई हुई है। और एक, दूध काम विकार से भी जुड़ा हुआ है, वो पत्नी होती है ना, पति को दूध देती है ग्लास शादी के बाद, हाँ 40 साल पहले का जो दूध था शायद अच्छा होगा, 50 साल पहले का अलग था, पर वर्तमान में जो दूध है, मिल्क इंडस्ट्री में जाओ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, देखो वहां पे जानवरों को कैसे घसीट के लेके जाते हैं, कैसे पकड़ा जाता है उसके पैर, जबरदस्ती दूध इंजेक्शन दिए जाते हैं, मशीन लगाते हैं और दूध खींचा जाता है, और वो खून पूरा, उसका कोई किसी को कुछ नहीं है, मर जाती है तो मर गई, उसको डाल दिया और ट्रक में भर के ले गए और फेंक दिया। जो हिंसा है उसके साथ हो जाती है, वो वीडियोस अगर देखोगे तो दूध उठा के फेंक दोगे, कभी पियोगे नहीं, कत्ल कर देते जो दूध नहीं देती है। मिल्क हमारा आहार नहीं है, ये तो हमने 3-4 ही बातें कही, इस पर कम से कम 100 से ज़्यादा पॉइंट्स है, ये एक भी पॉइंट पूरी यहाँ कवर नहीं की, क्योंकि हमें दूसरी पॉइंट्स कवर करनी है। दही छाछ कम एंटीजेनिक है, परंतु हिंसा वाला पॉइंट तो वहां पर भी आएगा, वो जो भी दूध से निकला है डेयरी, इसके लिए पूरी विश्व भर में ये ट्रेंड अभी चालू हो गया वीगनिज्म, वीगन वीगन वीगन, अहिंसक इसके मीटिंग्स होती है, ग्रुप्स बने हुए हैं, बीकेएस में भी, हमको याद है 2014 में हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था जिसमें बहुत सारे भाई बहने ऐड हो गए थे विदेश के भी, यहाँ पर पार्टियाँ की थी वीगन पार्टी, और बहुत खुश होते थे कि हम वो सब नहीं लेते, और ये बहुत ज़रूरी भी है इस समय। लेना है तो नट मिल्क लो, बादाम का मिल्क बनाओ, सोयाबीन सोया मिल्क, मूंगफली, ये इसका बनाओ, अगर इतना ही दूध दूध का शौक है, दूध के बिना रह ही नहीं सकते। एक भाई का अनुभव है, उसमें लिखा है कि मेरा जन्म भी ऐसे परिवार में हुआ था कि जहाँ दूध ही दूध था, मैं बचपन में दूध डायरेक्ट गाय को ये मुंह लगा के पीता था, इतना मेरी पालना 60 वर्ष तक दूध से हुई है। एक वीडियो है जिसमें वो लिखता है 50, उसकी उम्र है 53, उसने 53 पॉइंट्स लिखे दूध के, कितने नुकसान है। मैं जीवन भर सफ़र करता रहा, जीवन भर मुझे खांसी चलती रही, फिर भी मुझे समझ ही नहीं आया ये हो क्यों रहा, इतने डॉक्टर्स बदले, सारी बीमारी सब किया और दूध पीते रहा, अब समझ में आया उसने 63 के सभी ज़्यादा पॉइंट्स लिखे, चाहो तो हम ग्रुप में डाल देंगे, वो पूरा एक 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 पॉइंट 63 पॉइंट्स अगेंस्ट मिल्क। और मेडिकल फ्रेटर्निटी और ये सब तो कहते पियो पियो पियो, ताकत आएगी, माँ कहती है पीते क्यों नहीं, जबरदस्ती, और कोई भी छोटा बच्चा दूध पीना ही नहीं चाहता, भागता है, पर तो हम उसको बोर मीठा और उसमें हॉर्लिक्स और डाल डाल के उसका नाक बंद करके उसको पिलाते हैं, हमारा नेचुरल स्वभाव ही नहीं है उसको पीना, बचपन से आकर, फिर भी हम पीना कहाँ चाहते, पर हाँ उसको हम आइसक्रीम बनाते तो पीते, फिर उसको पनीर की सब्जी बना देते और सारे मसाले डाल डाल के, तेल डाल डाल के, जला भून के, और फिर उसको सब करके। तो चेंजिंग ट्रेंड क्या है, वीगनिज्म। हाँ तो उसी के लिए कह रहे, ये चेंजिंग ट्रेंड है, आज का टॉपिक ही वो है। ऐसे बहुत सारे बीकेज है, और बहुत सारी बीके वर्ल्ड में ही टोली भी बनती है कई जगह पर, दो प्रकार की टोली, एक वीगन टोली एक नॉन वीगन टोली, तुमको जो चाहिए वो लो, अच्छा तुम ये नहीं खाते ये लो, फ्री माइंडेड, ऐसे कई सारे सेंटर्स हैं जहाँ दो प्रकार की टोलियाँ बनती है। तो कई लोग जागृत है, कई नहीं जागृत है, कई लोग अब भी लेते हैं, वो उनकी इच्छा, क्योंकि सब जगह हमने कहा ना, हम क्या कोर्ट करते, ये यज्ञ का सिस्टम है, ये बाबा का सिस्टम है, पर बाबा जब ये बताए थे तब कब बताया था, ये बहुत पहले की बातें हैं, और जैसे वर्तमान समय को देखते हुए सारा चेंजेस हो रहे हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है, वो बहुत सारी बातें जो है अपडेटेड हो रही है अभी कोविड, पोस्ट कोविड के बाद, तो कोविड के पहले जैसे हमने कहा था, एक भाई पूछ रहा था क्या ब्राह्मणों को भी कोविड हो सकता है, ब्राह्मण बाबा के बच्चे, और कितने खाली हो गया ब्राह्मण परिवार कोविड में, बाबा के बच्चों को, हमारे यहाँ रोज के हम रोज 60 पेशेंट्स 50-60 पेशेंट्स देखते हैं, सब बाबा के ही बच्चे आते, शुगर 300 और 400, और कहते कुछ लेने, नहीं नहीं बाबा देख लेगा, बाबा सब करता है, बाबा ने ये कहा है, बाबा ने क्या सिखाया है, ये परख शक्ति तुम में होनी चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, शुगर का पेशेंट है 400 शुगर चल रहा है और भोग है और खा रहे भोग, तो बाबा क्या कहेंगे, बच्चा बच्चा तुमने ब्रह्मा भोजन स्वीकार किया, बाप बहुत खुश है, वाह बच्चे वाह, ऐसे बोलेगा भगवान, कभी नहीं। बाबा ने तो हर चीज के लिए अलग अलग श्रीमत दी है, हर एक को श्रीमत दी है, वर्तमान समय क्या श्रीमत है समझो उसको, आंखें खोलकर हर चीज जो हम कर रहे हैं, और खुद खा के देखो, और अगर नहीं मानते तो बंद करके देखो, एक हफ्ता ट्राई करके देखो क्या होता है, सी एंड सी, रिसर्च करो, नहीं ठीक लगा तो छोड़ो, वापस चालू करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। बट ये हमारा हार नहीं है। तो ये पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, 4 ये हो गई। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, ऑनलाइन गार्बेज। ऑनलाइन गार्बेज, गार्बेज अर्थात कचरा। ऑनलाइन गार्बेज ये इतना बढ़ रहा है वर्तमान समय, इतना बढ़ रहा है। ऑनलाइन अब्यूजेस, विस्तार करना, प्रचार करना, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, ये सब ऑनलाइन जब से हुआ है तब से ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐप्स, नए नए ऐप्स, फिर ब्राउजिंग, इंटरनेट, दिन रात इंटरनेट पे लगे रहते, कॉल्स, फिर चैट्स, फिर डाउनलोड्स, फिर ईमेल्स, फिल्म्स, गेम्स, नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, जोक्स, दिन रात एक दूसरे को क्या करते रहते, जोक्स भेजते रहते, उसका कोई तुक नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। स्टेटस, ODP, लैपटॉप, मोबाइल, सॉन्ग्स, अलार्म, क्लासेस, न्यूज़, ऑनलाइन शॉपिंग, फोटोग्राफी, सेल्फी, रिकॉर्डिंग, रीडिंग, सोशल मीडिया, फेसबुक, TV चैनल्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जूम, और कितने सारे हैं, इतने सारे हैं कि आधे से ज़्यादा लोग उसी में बिजी रहते, बाकी दूसरा टाइम ज्ञान योग के लिए टाइम नहीं है। कलयुग में जो बताया ना ब्राह्मणों की, उसमें एक चीज़ से वैराग आ जाता है ज्ञान योग से। ज्ञान योग से वैराग मतलब संगम युग का कलयुग चालू है, क्योंकि टाइम ही नहीं है। ये सारा जो ऑनलाइन गार्बेज है, और एक बात याद रखना है, यज्ञ के सूक्ष्म जो एक जो लिस्ट बनाई थी बहुत पहले, 108 सूक्ष्म पाप, उसकी लिस्ट सबके पास होगी, यहाँ पर भी कई बार सुनाई है। उसमें है एलिगेशंस, किसी पर मिथ्या आरोप लगाना, एक है अफवाह फैलाना, दूसरे फैलाए पर हम उसमें सहभागी ना हो, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, क्रिएटिंग र्यूमर्स, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना है, किसी का बदनाम करना, जानबूझकर किसी की सहायता ना करना, ये बहुत सारे आर्गुमेंट्स करना, क्रिटिसाइज करना, वेस्ट टॉक, 108 सूक्ष्म विकर्म है ये ब्राह्मण जीवन की, इस तो कई पहले चर्चा हो चुकी है। तो जितना हो सके काम से काम रखना है, बस क्लास सुनने के लिए जा रहे, क्लास सुन लिया, पूरा हो गया, वापस आ जाओ। और क्लास सुनने के लिए यूट्यूब और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु इसमें टू मच में जो भी जाएगा वो फंस जाएगा, और आवश्यकता ही नहीं है इसकी। और मानो कि बहुत सुखी हो जाओगे, बहुत सुखी हो जाओगे, नींद भी अच्छी आएगी। और जितना हो सके सब डिसेबल करके रखो। हमने खुद 2 साल हो गए यूट्यूब डिसेबल कर रखा है, देखा ही नहीं। और कब देखते हैं, यदि कोई कुछ भेजता है और कुछ देखना है ज्ञान रिलेटेड और बहुत आवश्यक है, उसको खोलते हैं गूगल में जाके, वो ऐप में नहीं, वो तो बंद, देखना ही नहीं है उसको, क्योंकि सबसे बड़ी माया वर्तमान में चल रही है यूट्यूब। डिसेबल, जरूरत नहीं है उसकी, बंद कर दो उसको। और बाकी ये इतना सारा फेसबुक और क्या क्या चला रखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब 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 से निकल जाओ बाहर, सब से बाहर आ जाओ, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, बस व्यर्थ है। हाँ, ज्ञान, कोई ज्ञान योग करते रहता है, पर वो ज्ञान योग के आधार पर की आड़ में दूसरी चीज़ें करते रहता है, सब व्यर्थ है उसमें। मीडिया जो है पूरा कचरे से भरा हुआ, किसी ने चित्र भेजा था ऐसा, 4 बॉक्स, ये व्यक्ति अपना कचरा इधर दीवार से इधर डाल रहा है, ये इधर से डाल रहा है, ये इधर डाल रहा है, ये वापस इधर डाल रहा है, दिस इज व्हाट्सएप। दीवार है, एक अपना कचरा उधर डालता है, वो उधर का कचरा उधर डालता है, कचरे कचरे एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। ऑनलाइन अब्यूजेस, ऑनलाइन लड़ाइयाँ, पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में होती थी, अभी सोशल मीडिया पर लड़ाइयाँ चालू है। वो उसके बारे में कुछ भेजता है, कुछ भेजता है, वो ये भेजता है, वो भेजता है, व्यर्थ। तो ऑनलाइन ट्रेंड है, धीरे धीरे इन सब से बाहर निकलते जाओ। सेवा का बहुत अच्छा साधन है माना, पर जो सेवा हमें ही डिस्टर्ब कर रही है उससे क्या फायदा, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। लोग किसमें लगे हुए, लाइक्स, कमेंट्स, और क्या रहता है, सब्सक्राइब, हमारे इतने सब्सक्राइबर, हमारे उतने फॉलोअर, हमारे ऐसे फॉलोअर, हैक हो जाता है तो रोते हैं, जैसे बच्चा मर गया ना, मेरा अपना बच्चा मर गया, और अगर चैनल को ये कर दिया, किसी ने स्ट्राइक दे दिया, उतना पीड़ा यहाँ होती है। इतने जो अपलोड किए थे सब गया एक रातों में, पासवर्ड भूल जाते हैं तो पता नहीं, जैसे महाप्रलय आ जाता है, कितना दुख होता है। ये सब माया का क्षेत्र है। नेक्स्ट। यूट्यूबर, उसका क्या? हाँ, उसका क्या? चैनल बना बना के, नया नया चैनल, और उसमें ये वो क्या, वो एडवर्टाइजमेंट, मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन, पैसा, वो पैसे कमाने का साधन बना रखा है। नेक्स्ट, छठवा, फैमिलियरिटी। ब्राह्मण परिवार में देखा गया है मेल्स फीमेल्स के आकर्षण, बी केस में कमी नहीं है। बी केस, फॉलिंग इन लव विथ ईच अदर, गेटिंग मैरिड एंड गिविंग अप द ज्ञान, ज्ञान छोड़ देते, शादी कर लेते, ज्ञान छोड़ देते, प्यार हो जाता है एक दूसरे से। इसका बीज क्या है? फैमिलियरिटी, काम से काम रखो बस, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, अच्छा लगा ठीक है रखो अपने पास, इसकी याद आ रही है, उसकी याद आ रही है, बाप को छोड़ के ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की याद आ रही है। दादी क्या कहती थी, ना मुझे कोई याद करे ना मैं किसको याद करूं। ये जो बढ़ती हुई फैमिलियरिटी है इसको रोकना। और फैमिलियरिटी क्यों है? क्योंकि अंदर खालीपन है। एक कमरे में चार घंटा रुकने को बोलो तो रुक नहीं सकते, बेचैनी होती है, किससे बात करनी है, फोन पे कुछ करना है, फोन टॉक्स, वीडियो कॉल्स, प्राइवेट चैट्स, एनक्रिप्टॉन, ये सब क्या है, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? ये सब फैमिलियरिटी बढ़ाने के साधन है। तो चेंजिंग ट्रेंड में फैमिलियरिटी को कम कम करते जाओ, कम से कम बस। और सातवा, सेरेमोनियल्स, रिचुअल्स। हम एक सेंटर पर गए थे, भट्टी चालू हो रही, बहन जी आए, एक फूल दिया, भट्टी चालू करो, और कुछ नहीं, बेस्ट, सबसे बेस्ट। विदेश में प्रोग्राम होता है, एक टेबल, उसमें एक बेडशीट डाल दी, प्रोग्राम चालू। और भारत में धूम धड़ाका, बैंड बाजा, बैंड बजता है, फिर उसका स्वागत होता है, फूर मारा है, हार चढ़ाए जाते हैं, और फिर मंच पर, और फिर इतना सेरेमोनियल्स, इतने सारे रिचुअल्स। एक जगह तो हम गए थे, भाषण हमारा बोलने के लिए बोला था, 40 घंटे का टाइम था, वो जो 40 मिनट सॉरी जो इंट्रोडक्शन देने वाली बहन थी, वही 20 मिनट तो उसने इसमें घुस गई, इस 40 मिनट में। हमने कहा बाकी का भी आप ही कर दो, वो इंट्रोडक्शन देना था हमारा, दे रही है खुद का कि उसने क्या क्या किया है। हमने कहा ये भी ठीक है, चलने दो। इतने सेरेमोनियल, फिर उसने बोल दिया, फिर दूसरे आए, फिर उन्होंने बोला, फिर तीसरे आए, फिर वो बोला, सेरेमोनियल्स टू मच नहीं हो, जरूरी है जहाँ जहाँ जरूरी है, जैसे बाहर के लोग हम बुलाते हैं, जो चीफ गेस्ट है उनका सत्कार सम्मान करने की आवश्यकता है, पर टू मच ये हार, इधर टोप, ये वो, ये कोई कोई सेंटर्स पर सम्मान, हाँ सम्मान सत्कार थोड़ा किया, वो आवश्यक है, आवश्यक है, क्योंकि अतिथि देवो भव, इतने दूर से आ रहे, किसी दूसरे देश से इस देश में आ रहे, सेंटर पर पहली बार कोई मधुबन निवासी आ रहा है, तो बहनों को भी खुशी होती है और हमको भी खुशी होती है कि कितना प्यार है, आपस में प्रेम है वो परिवार का। तो प्यार भारी पड़ता है, अच्छा तो वो भी जरूरी है, पर टू मच इसमें तो ये कम कम हो जाए, कम से कम ये सारी सेरेमोनियल्स को धीरे धीरे कम कम, जितना हो सके कर सके, टू मच में जाना नहीं, और एकदम जीरो भी नहीं करना है, आवश्यक है, रूखा सूखा ना लगे एकदम ही। पर दिवाली, अब फेस्टिवल्स को ले लो सारे, कितना खर्चा करते होंगे ब्राह्मण फटाखों में, बाबा ने कहा है फटाके फोड़ो, 1 लाख 2 लाख तो ऐसे ही चले जाते हैं, एक एक पैसा यहाँ आ रहा है, उधर माता किसी सेवा केंद्र पर महीने में 2 रुपये डालती है, उसमें रोज का 1 आना बचाती है और उस गुल्लक में डालती है सेंटर के, और वो भेजती है किस भाव से, ये मधुबन जाना चाहेगा, बाबा के यज्ञ में जाएगा, सेंटर पर जाएगा, और ब्राह्मण पटाखे यूज करते। होली, होली बाबा ने तो स्ट्रिक्टली मना किया है, फिर भी कलर पूरा, बर्थडे इतना होली मनाते हैं। हमने 10 बकेट पानी एक दूसरे पर उड़ाया आज, खुशी खुशी से बताते। और वो रंग और वो केमिकल्स है वो भी मत भूलो, हेल्थ केमिकल्स है वो सारे जो लगते हैं। हमारी ये होली तो है ही नहीं। होली पर कितनी मुरलियाँ चली है, कोई एक मुरली बताओ कि जिसमें बाबा ने कहा जाके एक दूसरे को काला काला रंग रंगो, काला पीला नीला, कभी नहीं। होली, बाकी सारे फेस्टिवल्स, कोई भी फेस्टिवल ले लो, न्यू ईयर ले लो, हम भी अगर संसार के धूम धड़ाके वाले रात भर 12 बजे गीत बजाते रहे, आत्माभिमानी स्थिति और नयापन कहाँ है उसमें। वही हम भी कर रहे हैं, वही संसार का सब कुछ, इतना बड़ा केक और उसमें इतना पैसा खर्च, वही सारे बर्थडे सेलिब्रेशंस जो संसार के लोग कर रहे हैं। अभी कल परसों ही मुरली थी ना, कैंसिल कर दो मुरली थी अभी, फिर भी हम कहते जैसे हमने सुना ही नहीं। क्या क्या कहा, हमको पता ही नहीं। हमारे कोई कोई पेशेंट है, सिलेक्टिव हियरिंग होती है, वो पेशेंट के रिश्तेदार कहते हैं ये जो है ना हमारे दादा, उनको अपने काम की बात सुनाई देती है बस, बाकी काम दूसरी बातें सुनाई नहीं देती है। पैसों की कोई बात हो एकदम तुरंत सुन लेते, बाकी चीज़ें उनको कितने भी बोलो कान में बोलो फिर भी नहीं सुनते, सिलेक्टिव हियरिंग बस। पापा की वो बातें निकालना बिल्कुल, कि जिसमें बाबा ने ये सब कहा है और ये भी बातें कही है वो छोड़ देते, ये अगर कहा है तो वो भी कहा है, फिर दोनों को देखो। खाओ पियो मौज कहो कहा है, तो एक तरफ तुम वनवाह में वो ये भी कहा है, तुमको ये सब शौक नहीं होना चाहिए ये भी कहा है, सब कुछ कहा है। लास्ट पॉइंट, मनी माइंडेडनेस, 8वां, पैसा पैसा पैसा। एक कारण इस यज्ञ से बाहर जाने का पैसा भी है। उस दिन 21 कारण सुनाए थे भागंती के, उसकी उस दिन की क्लास में 21 कारण, एक कारण है पैसा। जब बहुत पैसा ऐसी चीज है ना, कितना भी मिल जाए पेट नहीं भरता इससे, और चाहिए और चाहिए। बाबा एक झाड़ी लगा दो बस पैसे का, जिसमें रोज नोट निकले, सेवा में काम ले। अब और कहने के लिए सेवा में, शुभ भावना बाबा की यज्ञ में लगाना। और उस पैसों के पीछे ना ज्ञान है ना योग है। रात को 12 बजे आ रहे ड्यूटी से, कैसे होगा ज्ञान योग। तो ऐसी ये 8 बातें थी। पहला बताया साइलेंट रिट्रीट करनी है, अभी आवाज बहुत कर लिया, क्लास सुनना सुनाना बहुत है, क्या कर रहे हो इसकी क्लास उसकी क्लास। अरे शिव बाबा कहाँ गया, शिव बाबा है ही नहीं, बस क्लासेस है, बाढ़ आ चुकी है। नेक्स्ट रिसर्च करना है अपना। तीसरा एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या में लाना है। चौथा दूध और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें, सारा डेयरी ज़ीरो। धीरे धीरे जो नहीं कर सकते वो नट मिल्क्स में जाओ, बादाम का दूध, इसका दूध, सोया का दूध, नारियल का दूध बनाओ, बहुत मज़ा आएगा। ये करके देखो, सोया सब कुछ, पर वो वाला जो है, और जो नहीं मानते वो पहले डेयरी इंडस्ट्रीज विजिट करो जहाँ गायों से दूध बनता है, उनको जाके एक बार देख के आओ उनकी दशा, कैसे इंजेक्शन देते और कैसे पकड़ पकड़ के उनको मारा जाता है, तो पता चलेगा कि हम इतना बाबा की याद में जो खा रहे उसमें वो भी जुड़ा हुआ है। हाँ, वो एक कहा जा सकता है जिनमें हिंसा कम से कम है, परंतु फिर भी एक प्रश्न तो फिर भी रहता है, उनका दूध उनके बछड़ों के लिए। वो अगर उनसे पूछो कि क्या ये हमारे लिए है, वो मना कर देगी। और दूसरा हेल्थ रिलेटेड देखो, एंटीजेंस है, कैंसर, कितनी सारी, बहुत हेवी है वो डाइजेशन के लिए। और गाय का बछड़ा कैसे उछल, क्योंकि उसमें पूरा एनिमल, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क और उनका, इसका भी चार्ट है, प्रोटीन्स उसमें कितना है, सब कुछ हेवी हेवी है उसमें, बहुत हेवी है। ह्यूमन बॉडी उसको है ही नहीं ह्यूमन बॉडी के लिए वो मिल्क। नेक्स्ट ऑनलाइन गार्बेज, जो भी व्यर्थ आता है उसको फॉरवर्ड करना, अर्थात विकर्म करना या पाप करना, ये सूक्ष्म, ये अभी ऑनलाइन डिजिटल सीन्स है, ये डिजिटल युग में डिजिटल सीन्स, स्मार्ट युग में स्मार्ट सीन्स, ऑनलाइन सजा वो सब होगा। नेक्स्ट फैमिलियरिटी, ये जो है ना फैमिलियरिटी जो बढ़ रही है आपस में, इसको कम, भाई बहन के रिश्ते के बाहर कोई रिश्ता नहीं बनाना है, बिकेज अर्थात भाई बहन, और उसमें भी इसमें भी माया है, भाई भाई, और उसके भी ऊपर आत्मा आत्मा, बस। नेक्स्ट सेरेमोनियल्स और रिचुअल्स, और लास्ट मनी माइंडेड, पैसा 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 पैसा, दिन रात पैसा, ये से। तो क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति की तू आन है, कांति क्रांति की तू शान है, क्रांति का सपूत है तू सो रहा जवान है, कौन है जो दौड़ दौड़ गाँव गाँव जाएगा, रक्त क्रांति के जहर से देश को बचाएगा, तेरे बल पर अब भी देख देश का को गुमान है, करवटे बदल नहीं तू अब तो आंखें खोल दे, तू निकल और एक बार इनकलाब बोल दे, तेरे दम से ये जमीन और आसमान है, मार्ग की मुसीबतों से कब रुकी जवानियां, पथ की चुनौतियों से डर के कब झुकी जवानियां, उठ कदम बढ़ा के तेरे सांस में तूफान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है। ओम शांति।
क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, कौन है जो दौड़ दौड़ गाँव गाँव जाएगा, कौन है जो दौड़ दौड़ गाँव गाँव जाएगा, रक्त क्रांति के वहन से देश को बचाएगा, कौन है जो दौड़ दौड़ गाँव गाँव जाएगा, रक्त क्रांति के वहन से देश को बचाएगा, उठ कदम बढ़ा के तेरी सांस में तूफान है, उठ कदम बढ़ा के तेरी सांस में तूफान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, तू बढ़ा है जब भी तो आंधियां ल जा गई, तू बढ़ा है जब भी तो आंधियां ल जा गई, क्रांतियां कदम कदम पे मंजिलें सजा गई, तू बढ़ा है जब भी तो आंधियां ल जा गई, क्रांतियां कदम कदम पे मंजिलें सजा गई, तेरे इस सही कदम पे झुके आसमान है, तेरे इस सही कदम पे झुके आसमान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है।